मोक्षमार्गस्यनेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तुरीयस्य निकायस्य सामान्य संज्ञा संकीर्तनार्थनाः। अब देवों का जो चतुर्थ समूह है उसकी सामान्य संज्ञा की कथन हेतु यह सूत्र है। वैमानिकः, वैमानिक, वैमानिक ग्रहण अधिकारार्थम। अब यहां पर वैमानिक देव का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। इतो उत्तरं विवक्षन्ति तेषां वैमानिक संप्रत्ययो यथा स्यादिति अधिकार क्रियते। आगे जो भी कथन हो रहा है वो वैमानिक देवों का हो रहा है। विशेषण आत्मस्थान सुकृतनो मानयन्तीति विमानानि। विमान किनको कहते हैं? कि जो विशेष रूप में, विशेष रूप से अपने में स्थित पुण्यशाली जीवों को सम्मानित करते हैं उनको विमान कहते हैं। विमान जो विशिष्ट मान प्रदान करते हैं उनको सम्मान विमान कहते हैं। विमानेषु भवा वैमानिकः, विमानों में होने वाले वैमानिक हैं। तानि विमानानि विविधानि, वे विमान विविध प्रकार के हैं। इंद्रक, श्रेणी, पुष्प प्रकीर्णक भेदीन, तीन प्रकार के समझ लो। इंद्रक जो केंद्र में होते हैं, फिर श्रेणीबद्ध जो दिशाओं में पंक्ति रूप होते हैं, विदिशाओं में, दिशाओं में पंक्ति रूप होते हैं, और जो इनके बीच बिखरे हुए जो विमान होते हैं वो पुष्प प्रकीर्णक, जैसे पुष्प ऐसे डाल दो तो बिखर जाते हैं, वो पुष्प प्रकीर्णक विमान कहलाते हैं। तत्र इंद्र विमानानि, इंद्रक विमानानि इंद्रवत मध्य व्यवस्थितानि। इंद्रक विमान जो होते हैं इंद्र के समान बीच में व्यवस्थित रहते हैं। तेषां चतुष्षु गतिषु, उनका चारों गतियों में, उनकी चारों गतियों में आकाश प्रदेश श्रेणीवद अवस्थानात् श्रेणी विमानानि, आकाश प्रदेश की पंक्तियों के समान अवस्थित होने के कारण श्रेणीबद्ध विमान होते हैं। फिर विदिक्षव प्रकीर्णक पुष्पवद अवस्थानात् पुष्प प्रकीर्णानि, तो विदिशाओं वाले जो विमान है उनको श्रेणीबद्ध न कह करके यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि विदिशाओं में बिखरे हुए फूलों के समान अवस्थित होने के कारण जो तीसरे प्रकार के विमान है उनको पुष्प प्रकीर्णक विमान कहते हैं, फूलों के समान बिखरे हुए विमान। वैमानिकों के दो भेद हैं, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्न यानी कल्प में उपपाद को प्राप्त कल्पोपपन्न, और कल्पातीत जो कल्पों से परे, स्वर्गों से ऊपर। तेषाम अवस्थान विशेष निर्ज्ञानार्थम, निर्ज्ञापनार्थम आह। उनके, उनका जो विन्यास है, उनका जो अवस्थान है वो किस प्रकार का है, तो उसके भेद का निर्ज्ञापन के करने के लिए आचार्य कहते हैं, ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। ऊपर र्योपरि, ये सारे विमान ऊपर ऊपर है। किमर्थम इदम उच्यते, ये ऐसा क्यों कहा? तो आचार्य कहते हैं तिरेग अवस्थित प्रतिषेधार्थम उच्यते, तिरछे नहीं है, ऊपर ऊपर है, इसलिए ऐसा कहा। न ज्योतिषकवत तिरेग अवस्थित, ज्योतिष के विमानों के समान ऐसे तिरछे फैले हुए नहीं है। न व्यंतरवद असमावस्थिता, व्यंतरों के समान असम अवस्थित भी नहीं है। ऊपर विपरीत्युच्यन्ते, ऊपर ऊपर है ये। केते कल्पा, अब वे कल्प और वे जो विमान है वे कौन से हैं? तो आचार्य कहते हैं केते कल्पा, तो बोल रहे कौन है वे, तो कल्प हैं, उनको कल्प बोलते हैं ऊपर ऊपर। यद्येवम, यदि ऐसी बात है तो केतसु कल्प विमानेषु ते देवा भवन्ति इत्यतः, तो कितने कल्प विमानों में वो देव होते हैं, ऐसा प्रश्न उठने पर कहते हैं। सौधर महिषान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाचितयोर नवसुग्रैवैयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। देवों के 63 पटल होते हैं,
सौधर्म, ऐशान, सौधर्म ऐशान, इनका नाम कल्प क्यों है? तो उत्तर देते हैं, चातुरार्थी के नाणा स्वभावतो वा कल्पस्य अभिधानं भवति, स्वभाव से इनका कल्प अभिमान होता है। अतः कमत कथम इंद्राभिधानम स्वभावत साहचर्यात्, जो इंद्र होते हैं ना उनके नाम से कल्प होते हैं। सुधर्म, सुधर्मा सभा का जो इंद्र होता है उसको सौधर्म इंद्र कहते हैं और उस विमान को सौधर्म विमान कहते हैं। ईशान कल्प का, ईशान इंद्र जो होता है वो जिस कल्प में होता है उसको ईशान कल्प कहते हैं। सुधर्मा नाम सभा, सुधर्मा सभा का नाम है। सास्मिन नस्ति इति सौधर्म कल्प, वो जिस इन जिस कल्प में पाई जाती है वो सौधर्म कल्प होता है। अण प्रत्यय की है और तत्कल्प साहचर्याद इंद्रोपि सौधर्म, उस कल्प में की संगति होने के कारण इंद्र भी सौधर्म इंद्र है। ईशानु नाम इंद्र स्वभावत है, ईशान इंद्र का नाम स्वभाव से है और ईशान से निवास कल्प, और उस ईशान इंद्र का जो निवास रूप कल्प है स्वर्ग है वो ईशान ईशान है। तो उसकी सहचर होने से इंद्र को भी ईशान कहा जा सकता है। इंद्र का नाम स्वभाव से सनत कुमार है, उसका निवास सानत कुमार है, तो सानत कुमार की संगति से इंद्र को भी सानत कुमार कहते हैं। महेंद्र इंद्र का नाम है और स्वभाव से उसके निवास का नाम जो कल्प है उसका नाम भी महेंद्र है, इंद्र भी महेंद्र है। महेंद्र इंद्र का नाम है, तो ऐसे क्रम से सब जगह लगाना होगा। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव का पिष्ट, सब में इंद्र के नाम और स्वर्ग के नाम इस तरह से जोड़ लेना। आगमापेक्षा व्यवस्था भवती इति उपर विपरीत अनेन द्वयोर द्वयोर अभिसंबंधो वेदितव्य। स्वर्गों के विषय में आगम के अनुसार जो व्यवस्था होती है उसमें ऊपर ऊपर तो होती है लेकिन जोड़े में होती है। प्रथमौ, पहला जोड़ा क्या है? सौधर्म ईशान कल्पौ, सौधर्म और ईशान कल्प। फिर तयोर ऊपर ही सानत कुमार माहेंद्रौ, उससे ऊपर सानत कुमार और माहेंद्र कल्प आएंगे। तयोर ऊपरी ब्रह्म ब्रह्मोत्तरो, ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तरो, ब्रह्म को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तयोर ऊपरी लांतव कापिष्ट हो, तयोर ऊपरी शुक्र महाशुक्रो, तयोर ऊपरी शतार सहस्रारो, तयोर ऊपरी आनत प्राणतो, तयोर ऊपरी आरणाच्युतो, अध ऊपरी च प्रत्येकम इंद्र संबंधो वेदितव्य। नीचे ऊपर एक एक में इंद्र का संबंध जोड़ लेना। इन मध्य तो प्रतिद्वयम एक है, मतलब ये हुआ कि नीचे के दो जोड़ों में एक एक का एक एक इंद्र है और अंत के दो जोड़ों में एक एक का एक एक इंद्र है, तो आठ इंद्र हो गए। नीचे के चार स्वर्गों में चार इंद्र हो गए, ऊपर के चार स्वर्गों में चार इंद्र हो गए, तो चार और चार आठ। अब बीच में आठ स्वर्ग है क्योंकि कुल सोलह है, तो उन आठ स्वर्गों में दो दो स्वर्ग का एक इंद्र है, तो चार इंद्र है। इस तरह कल्पवासी देवों के बारह इंद्र होते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का, ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर का एक इंद्र ब्रह्मेंद्र है, लांतव कापिष्ट का एक इंद्र लांतव इंद्र है, शुक्र महाशुक्र का एक इंद्र शुक्र इंद्र है, शतार सहस्रार का एक इंद्र शतार इंद्र है। तो दक्षिणेंद्र आठ हो गए, उत्तरेंद्र चार हो गए। क्योंकि ये सारे नाम जो है ना, बीच के जो चार युगल हैं उनके दक्षिणेंद्र वाले ही नाम दिए हुए हैं। ब्रह्म स्वर्ग भी दक्षिण में है, लांतो भी दक्षिण में। ऐसा समझ लो कि मेरु पर्वत है बीच में जम्बूद्वीप के, और मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में सौधर्म स्वर्ग है, सौधर्म के ऊपर सानत कुमार स्वर्ग है, सानत कुमार के ऊपर ब्रह्म स्वर्ग है, ब्रह्म स्वर्ग के ऊपर लांतव स्वर्ग है, लांतव के ऊपर शुक्र स्वर्ग है, शुक्र स्वर्ग के ऊपर शतार स्वर्ग है, शतार के ऊपर आनत स्वर्ग है, आनत के ऊपर आरण स्वर्ग है, और इधर उत्तर में ईशान स्वर्ग है, फिर महेंद्र स्वर्ग है, फिर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है, फिर वहाँ कापिष्ट है, कापिष्ट के ऊपर महाशुक्र स्वर्ग है, फिर महाशुक्र के ऊपर सहस्रार है, सहस्रार के ऊपर प्राणत है, प्राणत के ऊपर अच्युत है, ऐसा क्रम चलता है। तो इसमें वहां पर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा इस तरफ आएगी तो उत्तर दिशा में जो है ना इंद्र चार है, क्योंकि शुरू के चार स्वर्गों में से दो स्वर्ग उत्तर दिशा में, तो दो ये हो गए। चार और एकदम ऊपर के जो चार स्वर्ग हैं वहां पर दो इंद्र हैं, प्राणत स्वर्ग के इंद्र और अच्युत स्वर्ग के इंद्र। महावीर स्वामी अच्युत स्वर्ग के इंद्र थे, वहां से यहां आकर मोक्ष गए। अब बाकी जितने दक्षिण वाले स्वर्ग बच गए, तो ये समझ लो कि प्रत्येक दक्षिण स्वर्ग के एक एक इंद्र है। दक्षिण स्वर्ग कोई भी इंद्र रहित नहीं है, उत्तर स्वर्ग में बीच के चार कल्प जो है इंद्र रहित है, तो 16 में से चार कम कर दो तो कुल 12 इंद्र होते हैं। जम्बूद्वीप पे महामंदिर, जम्बूद्वीप में जो महामंदिर है ना सुमेरु पर्वत, वो योजन सहस्त्र अवगाहो भवती, वो जो पहाड़ है उसका 1000 योजन हिस्सा जमीन के अंदर है, और 99 योजन सहस्रोच्छ्राय, 99 योजन उसका ऊपर है। तस्याधस्ताद अधोलोक, उसके नीचे अधोलोक है। बाहुल्येन तत्प्रमाण स्तिर्य प्रसृत स्तिर्यग्लोक, फिर मध्यलोक का जो मोटाई रूप प्रमाण है मेरु के बराबर तिर्यक लोक की मोटाई है, जमीन से लेकर स्वर्ग तक के मेरु जितना है ना 99,000 योजन, पूरा 1,00,000 योजन, तो 1,00,000 योजन की मोटाई वाला मध्यलोक है, ऊंचाई कह लो। तस्योपरिष्टाद ऊर्ध्वलोक, उससे ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और मेरु चूलिका, मेरु की जो चोटी है वो कितनी है, तो 44 योजनोच्छ्राया, 40 योजन ऊंची है। वहां पर अभिषेक वगैरह का उत्सव वहीं होता है 40 योजन में, मेरु पर्वत की जो चोटी वहां। तस्या ऊपरी, और वो जहां पर मेरु पर्वत खत्म हो जाता है, चोटी खत्म होती है, तो केशांतर मात्र, एक बाल मात्र के अंतर पार करने के बाद व्यवस्थित मृजु विमान मंद्रकम चौधरी मंदिर से, सौधर में स्वर्ग का जो ऋजु विमान है उसका इंद्रक बिल है वहां पर मेरु के ऊपर। सर्वमान्यत लोकानुयोगात, सर्वमान्यत लोकानुयोगात वेदितव्यम, अन्य जितना कुछ वर्णन है वो सब कर्णानुयोग, जिसको लोकानुयोग कहते हैं, उससे जान लेना। नवसु ग्रहवैक के श्वेति, नव शब्द से पृथक वचन किमर्थम, नव ग्रहवैक है उसमें नव शब्द को अलग से क्यों रख कह रहे हैं, तो बोले अन्यान भी नव विमानानि, अन्य भी नव विमान होते हैं, अनुदेश संज्ञकानि, उनकी संज्ञा अनुदेश है, संति इति ज्ञापनार्थम, इसका ज्ञान कराने के लिए नवसु अलग लिखा है, नवक ग्रेवे केशु न लिख करके नवसु और ग्रेवे केशु अलग अलग लिखा। तीन अनुदिशा नाम ग्रहणम वेदितव्यम, उससे अन्य दिशों का ग्रहण जान लेना, और उसके ऊपर आखिरी में जो है ना विजय वैजयंत जयंता पराजिते, ये जो लिखा ना विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये पांच अनुत्तर विमान है। अनुत्तर यानी इनसे उत्तर, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, पांच अनुत्तर विमान है। और सर्वार्थ सिद्धोच्च, अलग से सर्वार्थ सिद्धों को इसलिए लिखा क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में कुछ अलग बात होती है, वो एक भवावतारी होते हैं इसलिए, और दूसरी बात उनकी आयु भी एक रहती है 33 सागर, धवला के अनुसार उनकी एक ही आयु 33 सागर। यहां पर भी इसके बाद कहते हैं कि इन वैमानिक देवों में क्या अंतर रहता है, आपस में क्या फर्क रहता है, परस्पर क्या भेद होता है। तो कहते हैं स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धींद्यावधित विषय तो अधिका, ऊपर ऊपर स्थिति यानी आयु, प्रभाव यानी शाप और वरदान देने की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। देवों के पास ये शक्ति होती है शाप और वरदान देने की। अब वो बात शाम को निकली थी ना कि देवलोग क्या कर सकते हैं, सब अपने पुण्य पाप से होता है। तो फिर ये लिखा है कि उनके पास ये प्रभाव नाम की जो शक्ति है, प्रभाव जो होता है उनका, वो शाप और अनुग्रह उपकार करने की शक्ति होती है। सुख ये सब ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, स्थिति यानी आयु, प्रभाव यानी शाप और अनुग्रह करने की शक्ति, सुख यानी जो सुख है, फिर द्युति यानी उनका तेज, फिर लेशा, लेशा संबंधी विशुद्धि, और फिर इंद्रिय और अवधि ज्ञान के विषय, इन सब की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के देव नीचे वाले देवों से बढ़कर के होते हैं, अधिक होते हैं। तो क्या कम भी होते हैं ऊपर ऊपर के देव? आचार्य कहते हैं कि हाँ, कुछ अपेक्षाओं से वो नीचे वालों से कम भी होते हैं। कौन सी अपेक्षा से? तो बोलते हैं गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, गति यानी गमनागमन है, तो नीचे के देव ज्यादा गमनागमन करते हैं, ऊपर वाले कम करते हैं। शरीर, शरीर का अर्थ होता है उनके शरीर की ऊंचाई वगैरह जो है, वो नीचे वालों के बड़े बड़े शरीर होते हैं, ऊपर के देवों के छोटे होते जाते हैं। परिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता है यही परिग्रह, परिग्रह ऊपर ऊपर कम होता जाता है, नीचे ज्यादा होता है। अब देखिए इस सूत्र और पिछले सूत्र को मिला के देखो, पिछले सूत्र में सुख अधिक होता है और इस सूत्र में परिग्रह कम होता है, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि परिग्रह जितना कम होता है सुख उतना अधिक होता है, ये बात समझ में आती है। फिर अभिमान भी ऊपर ऊपर कम होता जाता है, नीचे नीचे अभिमान अधिक होता है। इसके बाद लेश्या बता रहे हैं, पहले तो आदित्य त्रिशु पीतांत लेश्या बताई थी, मतलब भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के देवों की लेश्या बताई थी, वैमानिक देवों की तो नहीं बताई थी। तो वैमानिक देवों की लेश्या बताने के लिए सूत्र है 22 नंबर सूत्र, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म और शुक्ल लेश्या होती है 2, 3 और शेष यानी उसके ऊपर के बाकी विमानों में। कैसे होती है बोले की देखिए कैसे होती है, तत्र कस्य काल एशिया इति उत्तर उच्यते। अब उसमें कौन से कल्प की कौन सी लेशिया होती है वो यहां कही जा रही है। सौधर्म ईशानी हो पीत लेशिया, सौधर्म ईशानी दो जो कल्प है वहां पर मात्र पीत लेशिया है। सानत कुमार माहेंद्र योग पीत पद्मलेश्या। सानत कुमार और माहेंद्र तीसरे और चौथे स्वर्ग में, पीतलेश्या भी है और कुछ वहां के कुछ विमानों में पद्मलेश्या भी है। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्टेशु पद्मलेश्या। फिर ये जो चार युगल हैं, नहीं दो युगल हैं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ट, वहां मात्र पद्मलेश्या है। जैसे नरकों में भी मिश्रलेश्या वाली कुछ पृथ्वियां थी, वैसे यहां पर देवों के विमानों में भी शुद्धलेश्या और मिश्रलेश्या वाले विमान है। जैसे सौदर मेशान जो है शुद्ध पीतलेश्या वाले, सानत कुमार महेंद्र में मिश्रलेश्या है पीत और पद्म, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ट में शुद्ध पद्मलेश्या है, फिर शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार इन चार कल्पों में पद्म शुक्लेश्या, पद्मलेश्या भी है और शुक्लेश्या भी है। तो अब एक बात ध्यान में रखने की है कि शुक्लेश्या वाले देव मध्यलोक तक जाते हैं और पद्मलेश्या वाले नीचे नरकों में भी जाकर के संबोधन दे सकते हैं। तो शुक्लेश्या वाले देवों में गमन जो होता है वो घट जाता है। तो यहां पर जो शुक्लेश्या वाले देव हैं वो भी नीचे नहीं जाएंगे। और आनत आदिशु शुक्लेश्या, आनत प्राणत आरण अच्युत, यहां पर केवल शुक्लेश्या है। फिर तत्रापि उनमें भी आनत आदि मैंने और ऊपर के सभी ले लेना, सिर्फ शुक्लेश्या वहां पर। तत्रापि उनमें भी अनुदिश अनुत्तरेषु, अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्लेश्या, परम शुक्लेश्या है। फिर एक प्रश्न आता है कि सूत्रे नभिहितम कथम मिश्र ग्रहणम। अब सूत्र में नहीं कहा था मिश्र का वर्णन, तो आपने कहां से निकाल लिया मिश्र का? तो बोले साहचर्यात, साहचर्य से निकाल लिया। तद्यथा था उसका खुलासा किया, छत्रिणो गच्छन्ति इति अछत्रिषु छत्रि व्यवहार, छत्ते वाले लोग जा रहे हैं ऐसा बोलने पर जो उसमें बीच बीच में कुछ छत्ते बिना के लोग हैं वो भी छत्ते वाले ही कहलाते, भीड़ में छत्री वाले। एवं यहां पर, यहां पर भी मिश्रयो अन्यतर ग्रहणम भवति, मिश्र में अन्य किसी एक का ग्रहण हो जाता है। अयम अर्थ सूत्र तक कथम गम्यते, ये अर्थ सूत्र से कैसे जाना जाता है इति चेत, ऐसा पूछोगे, यदि ऐसा पूछो तो फिर उच्चते कहा जाता है। एवं भी संबंध क्रियते, ऐसा संबंध जोड़ लेना, द्वयो कल्प युगल यो पीतलेश्या, सानत कुमार महेंद्र यो पद्मलेश्या अविवक्षात। सानत कुमार लेश्या में पद्मलेश्या की विवक्षा नहीं है, मुख्य रूप से पीत है, पद्मलेश्या भी गौण रूप से। ब्रह्मलोकादिषु त्रिषु कल्प युगलेषु पद्मलेश्या, ब्रह्मलोकादिक तीन कल्प युगलों में पद्मलेश्या है। शुक्र महाल शुक्र यो शुक्लेश्या अविवक्षात, क्योंकि शुक्र और महाशुक्र में शुक्लेश्या भी है लेकिन विवक्षा नहीं है, गौण है। शेषेषु शतारादिषु शुक्लेश्या, बाकी जो शतारादि उसमें शुक्लेश्या ही है। पद्मलेश्या अविवक्षात इति नास्ति दोष, पद्मलेश्या की विवक्षा न होने से उसमें दोष नहीं है। तो कल्प कहां तक के हैं? तो आचार्य कहते हैं प्राग ग्रैवय के कल्पा, ग्रैवयक से पहले पहले तक कल्प है, 16 स्वर्ग। लौकांतिका देवा वैमानिका संत को गृह्यते गृह्यन्ते, लौकांतिक देवों की भी चर्चा आती है अनेक शास्त्रों में, तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणकों में जो सम्मिलित होते हैं। तो वो लौकांतिक देव कल्पवासी हैं या कल्पातीत हैं, उनको कहाँ ग्रहण किया जाता है? तो आचार्य कहते हैं कल्पोपपन्नेषु, स्वर्गों में ही वो आते हैं। कथमिति चेत उच्यते, कैसे आते हैं? तो फिर ये कहते हैं ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, ब्रह्म लोक है आलय जिनका, ऐसे लोकांतिक देव होते हैं। ब्रह्म लोक कौन सा स्वर्ग था? वो छठा ब्रह्मोत्तर था, ये पांचवा था। तो पांचवे लोक में ही इनके निवास होते हैं लोकांतिक देवों के। एत्य तस्मिन लीयन्ते इति आलयः, आकर जिसमें लीन हो जाते हैं उसको आवास कहते हैं, आलय कहते हैं। ब्रह्मलोक आलोक आलयो ये शांते ब्रह्मलोकालयः, ब्रह्मलोक जिनका आलय होता है वो ब्रह्मलोकालय कहलाते हैं। लोकांतिका देवा विदितव्यः, ऐसे लोकांतिक देवों को जानना। यद्येवम्, यदि ऐसी बात है तो सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां देवानां लोकांतिकत्वं प्रसक्तम्, तो फिर सारे लोकांतिक कहलाएंगे, ब्रह्मलोक में रहने वाले सारे देव लोकांतिक हो जाएंगे, ऐसा प्रसंग आ जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं, अनवर्थ संज्ञा ग्रहणाद अदोष। यहां पर क्या है कि जो लोकांतिक शब्द है वो जिन पर लागू होगा उनको ही ग्रहण करना है, इसलिए दोष नहीं आएगा। ब्रह्मलोक में रहने वाले बहुत से देव ऐसे हैं जो लोकांतिक नहीं है, अर्थात जिनके, अब देखो, ब्रह्मलोको लोकः तस्यांतो लोकांतः तस्मिन् भवा लोकांतिका इति न सर्वेषां ग्रहणम्। ब्रह्मलोक कहलाया लोक, और उसका जो अंत है वो लोकांत कहलाता है। माने ब्रह्मलोक के अंत अंत में कुछ ऐसे स्थान बने हैं जहां पर उत्पन्न होते हैं, जहां पर रहते हैं, इसलिए सारा ब्रह्मलोक जो है वो लोकांतिक नहीं कहलाता। तो ब्रह्मलोक को लोक कह रहे हैं और उसके अंत को लोकांत कह रहे हैं, तो उस लोकांत में होने वाले लोकांतिक होते हैं, इसलिए सारे ब्रह्मलोक में रहने वालों को लोकांतिक नहीं कहते। तेषांग विमानानि, और उनके जो विमान है ब्रह्मलोकस्य अंतेषु स्थितानि, ब्रह्मलोक के अंत भागों में स्थित है। अथवा दूसरा अर्थ देखिए क्या निकलता है लोकांतिक का, जन्म जरा मरणा कीर्णो लोक, जन्म जरा और मरण से व्याप्त ये जो 343 रज्जु प्रमाण लोक होता है, जगत जिसमें जन्म जरा और मरण चलते रहते हैं, तो संसार है, इसको संसार भी कह सकते हैं, संसार भ्रमण। तस्यांतो लोकांत, उसका अंत जिनके निकट है वो लोकांत कहलाता है। लोकांते भवा लोकांतिका, मतलब एक जन्म जिनका बच गया है और वहां उत्पन्न हो रहे हैं उनको लोकांतिक कहते हैं। ते सर्वे परीत संसारा, वे सब संसार के किनारे पर होते हैं। ततश्च्युता, वहां से च्युत होकर एकं गर्भवासम प्राप्य, एक गर्भवास को प्राप्त होकर, गर्भावासम प्राप्त, गर्भ के आवास को प्राप्त होकर, परिनिर्वास्यन्ति, परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तेषां सामान्येन उपदिष्टानां भेद प्रदर्शनार्थमः, अब ये तो सामान्य वर्णन हुआ लोकांतिक का, अब इनके भेदों का प्रदर्शन करने के लिए आचार्य आगामी सूत्र कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य, सारस्वता आदित्य वन्य ऋण गर्द तो ये तुष्टा व्याबाधा रिष्टाश्च, ये लोकांतिक देव के आठ भेद हैं। को इमे सारस्वतादय, कहाँ है ये सारस्वतादिक? बोले अष्टास्वपि पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथा क्रमम मेते सारस्वतादेव देवगणा वेदितव्य, आठों पूर्व और उत्तर दिशा आदि दिशाओं में यथा क्रम से ये सारस्वतादिक देवगण जान लेने। तद यथा, उसका खुलासा, पूर्वोत्तर कोणे, सबसे पहले ईशान कोण की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ मिलेंगे आपको, पूर्वोत्तर कोण में सारस्वत विमानम, सारस्वत वैमानिक देवों का विमान मिलेगा आपको। पूर्वस्याम दिशे, फिर पूर्व दिशा में आदित्य विमानम, आदित्य विमान है। पूर्व दक्षिणस्याम दिशे, पूर्व दक्षिण दिशा माने अग्नेय कोण, वहां पर वन्नी विमानम, वन्नी विमान है। दक्षिणस्याम दिशि अरुण विमानम, दक्षिण दिशा में अरुण विमान है। दक्षिण आपर कोणे, दक्षिण पश्चिम में गर्द तोय विमानम, वायव्य दिशा में, नहीं नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य दिशा में गर्द तोय विमान है। अपरस्याम दिशि तुषित विमानम, पश्चिम दिशा में तुषित देवों का विमान है। उत्तर उत्तरापरस्याम दिशि, उत्तर पश्चिम दिशा में अव्याबाद विमानम, अव्याबाद लोकांतिक देवों का विमान है। उत्तरस्याम दिशि अरिष्ट विमानम, उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों का विमान है। च शब्दात, च शब्द समुच्चितास दिशाम पर दिशा मंत्रे द्वौ द्वौ देवगणों। च शब्द से इनके अंतरालों में भी दो दो देवगण के विमान है। तद्यथा, अब देखिए लोकांतिक देवों के और भी भेद यहां पर आ रहे हैं। आठ तो मुख्य भेद थे दिशे और विदिशा संबंधी, अब इनके अंतरालों में देखिए कौन से भेद आ रहे हैं। सारस्वत आदित्यांतरे अग्न्याभ सूर्याभ, सारस्वत आदित्य जो विमान है उनके बीच में अग्न्याभ और सूर्याभ, ऐसे दो प्रकार के लोकांतिक हैं। आदित्य से जो वन्निशांतरे, आदित्य और वन्नी के अंतराल में चंद्राभ सत्याभ, दो प्रकार के वैमानिक हैं। इसका मतलब ये हुआ आठ और इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, यानी आठ में से प्रत्येक के बीच में दो दो हैं तो 16 और 8 24 हो जाएंगे। वन्यरोण अंतराले श्रेयस्कर क्षेमंकर, श्रेयस्कर और क्षेमंकर वर्णी और अरुण के बीच में। अरुण गर्द तो ये अंतराले वृषभेष्ट कामचरा, वृषभेष्ट और कामचर देवों के विमान है। गर्द तो ये तुषित मध्य निर्माण रजो दिगंत रक्षिता, निर्माण रज और दिगंत रक्षित, ऐसे दो के विमान गर्द तो और तुषित के मध्य में, और तुषित अव्याबाद मध्य आत्मरक्षित सर्वरक्षित, इन दो के विमान है। अव्याबाद अरिष्ट अंतराले, अव्याबाद और अरिष्ट के अंतराल में मरुत और वसव, मरुद वसव। अरिष्ट सारस्वत अंतराले, अरिष्ट और सारस्वत के अंतराल में अश्व और विश्व, अश्व विश्वाह। सर्वे एते, अब देखिए 24 प्रकार के जो वैमानिक देव हैं ये सबके सब स्वतंत्रा, स्वतंत्र होते हैं, इनके ऊपर इंद्र का शासन नहीं होता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। हीनाधिकत्वाभावात्, क्योंकि ये छोटे बड़े नहीं होते, सब एक बराबर होते हैं। विषय रति विरहात, और विषय रति यानी विषयों की जो प्रीति है उसके त्याग के कारण, उससे रहित होने के कारण देवर्षय, ये देवर्षि होते हैं, अर्थात ये देवियों के सुख से रहित होते हैं, इनके पास कोई देवियां नहीं होती। इतरेषां देवानां अर्चनीय, बाकी देवों के लिए अर्चनीय होते हैं, बाकी देव इनको कुछ भेंट करके इनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। चतुर्दश पूर्वधरा, और सबसे खास बात कि ये 14 पूर्व के धारी होते हैं, पूरे श्रुत केवली समझ लो, द्वादशांग की पाठी। और कैसे होते हैं, तीर्थंकर निष्क्रमण प्रतिबोधन परा वेदितव्या, जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब ये आकर के कुछ अच्छे संबोधन देते हैं, स्तुतियां करते हैं, ऐसा जान लेना। आह उक्ता लोकांतिका, अब लोकांतिक देव आपने बतला दिए, जो ततश्चित्वा एकम गर्भावासम प्राप्य मवाप्य निर्वास्यन्ति इत्युक्ता, और ये भी आपने कह दिया कि ये वहां से नीचे आकर एक गर्भ के आवास को प्राप्त होकर निर्वाण को प्राप्त होंगे, ये भी आपने कह दिया। किम एवं अन्येपि निर्वाण प्राप्ति काल विभागो विद्यते, अन्येष्वपि, क्या अन्य देवों में भी निर्वाण की प्राप्ति के काल का विभाग विद्यमान है। इति अत आह, इस प्रश्न के कारण यहाँ आचार्य महाराज उत्तर देते हैं। अब ये लोकांतिक देव कौन बनते हैं, कैसे साधु लोकांतिक देव बनते हैं, इसके विषय में तिलवे पंडति में एक प्रकरण है, उसको चाहे तो अपन पढ़ सकते हैं। अन्यथा ये 25वां सूत्र है, देख लेते हैं ना। तिलोय पंडित का वर्णन बहुत उपयोगी रहेगा। अभी तक हमने बड़ों के मुख से ही सुना है, आज उसको अपन देख लेते हैं। छः सौ चौदह लिखा है और 614 में कुछ और आ रहा है। मिल तो सकते हैं, दूसरा भाग माता जी वाली तिलोय पंडिति का देख लेते हैं। तीसरा भाग मिल गया, इसमें मिल गया, ठीक है, हो गया। राजीनम विचाले संखिज्जा हुई बहु विह विमाणा एदि सुसरा जादा खादा लोयंतियां नाम। जो पंक्तियां हैं देवों के विमान की पांचवें स्वर्ग में, वहां पर बीच के अंतराल में संख्यात अनेक प्रकार के संख्यात विमान है, गिनती के विमान है, इनमें उत्पन्न होने वाले जो देव हैं वो लोकांतिक देवों के नाम से विख्यात है। तुलवी पंडिती का वर्णन 8वें अधिकार का 314वां गाथा सूत्र है। संसार वारी राशि जो लो तस होंति अंतमी जम्मा तम्मा ये दे देवालोयंति अति गुण नामा। इनका नाम गुणों से जुड़ा हुआ है। संसार समुद्र जो है उसको भी लोक कहते हैं, और उसके अंत में जो आकर विराजमान है यानी संसार के किनारे पर पहुंच चुके हैं उनका नाम लोकांतिक देव है। तो उनका नाम गुण नाम है, केवल नाम मात्र नहीं है, गुण नाम है। तेलो यंती देवा अठसुराजी सुहुंति विचाले सारसद बहुदितदा ईशानादि दिशा सुचौवीसम। वे लोकांतिक देव 8 पंक्तियों में होते हैं, और विचाले मतलब मध्य में, सारस्वत प्रभृति तथा ईशानादिक अदिशासु चौबीसम, और विदिशाओं में सब बीच बीच के सब गिन करके दिशा विदिशा और अदिशा इनके सब मिला करके 24 होते हैं। उत्तर दिभाई वसंति सार सदा सुराणिचम आयचा पुवाई अनल दिशाई वि वण्णि सुरा। ये वही क्रम है जो अपन ने सर्वार सिद्धि में पढ़ा अभी। दक्षिणं दक्षिणं दक्षिण दिशाए वरुणा नैरिदि भागम्मि गद्दतो याय पश्चिम दिशाए तुसिदा अव्वाबाहा समीर दिभाई उत्तर दिशाए रिठा एमेते अठतान विचाले दो दो हवंति अण्णि देवा तेसुन इमे नामा सारसद नामानम आयचानम सुराण विचाले अनलाभा सूराभा देवा चेठंति नियमेन। वही नाम दे रहे जो सर्वार सिद्धि में, चंदाभा सूराभा देवा आयच वर्णि विचाले से अखा खेमंकर नामसुरा वर्णि अरुणम्मी विसकोठा कामधरा विचाले अरुण गद्द तो यानम निम्माण राज दिशयन तरिखा गद्द तो ये तुसितानम तुसितवाबाहानम मंतरदो अपसव रख सुरा मरुदेवा वसुदेवा तह अव्वा बाहरिठ मज्जम्मी सारसदरि सारसदरिठाणम विचाले अस्विस नाम सुरा सारसद आयचा पत्तिकम हुंति सत सया। ये प्रत्येक 700 है। सारस्वत और आदित्य के अंतराल में जो है वो सब 700 हैं, फिर वन्नी और अरुण के बीच में 9900 है। अव्यवाद और अरिष्ट 11,000 है। चंद्राबदेव अव्यवादों के सदृश अर्थात सदृश और तथा सत्याबदेव 13,013 होते हैं। सबकी संख्याएं भी दी है, और कुल मिलाकर लोकांतिकों की जो संख्या है वो बता रहे हैं 407,806। ये लिखने योग्य है ये संख्या, यानी इतने अल्प है लोकांतिक देव। सोचो 407,806, यानी आप ये समझ लो कि देवों में सबसे कम देव लोकांतिक ही होंगे। इनसे कम कौन हो सकता है? सर्वार्थ सिद्धि वाले भी बहुत अधिक हैं। 4,07,806। फिर बोलते हैं कि लोकांतिक द्विमों का दूसरे प्रकार का वर्णन इस तरह है, पूर्व उत्तर कोण में सारस्वत, पूर्व में आदित्य, अग्नि दिशा में वन्नी, दक्षिण में अरुण, नैऋत्य में गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, वायव्य दिशा में अव्याबाध, उत्तर दिशा में तथा अग्नि दिशा के मध्य भी अरिष्ट देव रहते हैं। इनमें से प्रत्येक के प्रमाण को कहते हैं। सारस्वत, आदित्य तथा तुषित और गर्दतोय प्रत्येक 700 होते हैं और शेष देव जो पहले बतलाए उतने होते हैं। लोकांतिक देवों में से प्रत्येक के शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है और आयु 8 सागरोपम होती है तथा ये देव शुक्ल लेशा से शोभित होते हैं। देखो आप पांचवें स्वर्ग में बाकी सबकी लेशा कौन सी है? पीत लेशा है। पीत और पद्म लेशा मिश्रित है पर ये शुक्ल लेशा वाले होते हैं। सब लोकांतिक देव नियम से 641 नंबर काव्य में लिखा है, एक कार संग धारिणो नियम, 11 अंगों के धारक होते हैं। इसमें 11 अंग लिखा है, 14 पूर्व तो लिखा ही है उसमें, पर 11 अंग और 14 पूर्व धारण करने के बाद भी अगर मान लो 12वें अंग के जो शेष 4 अधिकार हैं उनका ज्ञान न हो पाए तो फिर वो 11 अंग 14 पूर्वों के धारी होते हुए भी श्रुत केवली की श्रेणी में नहीं आएंगे, द्वादशांग के पाठी नहीं माने जाएंगे। 14 पूर्वधारी है। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि जो मनुष्य गति में मुनि दीक्षा धारण करके 12 अंगों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं वही श्रुत केवली। बाकी देवों में 14 पूर्वों का ज्ञान तो है लेकिन दृष्टिवाद अंग का पूर्ण ज्ञान है ऐसा उल्लेख नहीं है, इसलिए यहां 11 अंग कह रहे हैं आचार्य व्यति वृषभ स्वामी। ये एक जानकारी की बात थी। सम्यक दर्शन से शुद्ध और स्वभाव से तृप्त रहते हैं, क्या जीवन होगा उनका। जो लोकांतिक होकर मोक्ष जाने वाले जीव हैं वो मुक्त जीवों के अनंत में भाग प्रमाण है ऐसा समझ लो, क्योंकि इनके निरंतर देवी आदि रूप परिवार नहीं है। एक मिनट, ये मूल गाथा में भी और देख लेते हैं। महिला आदि परिवार नहुंती दान संततम जन्मा, क्या बात है, महिला शब्द का प्रयोग वहां कर रहे हैं देवियों के लिए कि इन लोकांतिक देवों के पास महिला आदि का परिवार नहीं होता। इसलिए ये संसार क्षय के कारण वैराग्य की भावना भाते रहते हैं, ये बात है। माने ये देवगति में भी निरंतर वैराग्य भावना में तत्पर रहते हैं। संसार खवण कारण वैरग्यम भावयन्ति ते जम्मा, संसार के नाश का कारण जो वैराग्य है उसको ये हमेशा भावित करते रहते हैं, क्योंकि देवियां नहीं है इसलिए वो भावित करते हैं, देवियां हो तो नहीं कर सकते। अद्व मसरण पहुदिम भावन्ते भावयन्ति अणवरदम बहुदुख सलिल पूरित संसार समुद्र बुड्डन भयेन, क्या सुंदर शब्द है। अद्रुव अश्रण आदि भावों को वे निरंतर भावित करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत दुख रूपी जल से भरा हुआ जो संसार समुद्र है उसमें डूबने का इनको भय रहता है, इसलिए ये ऐसी भावना भाते हैं। और तिथ्यराणम समय परिणिक्रमणम मिजंति तेई सव्वे, तीर्थंकरों की दीक्षा के समय ये सब वहां जाते हैं। दुचरीम देहा देवा बहुविषम किलेस उन्मुक्का, बस दूसरे भाव में उनको मोक्ष जाना ही है। इसलिए बहुत प्रकार के विषम क्लेशों से ये मुक्त रहते हैं। इसके बाद लिखा है देव ऋषि नामधेया, सव्वे ही सुरे ही अचणित जाते, देवर्षि इनका नाम होता है और सभी देवों के द्वारा ये अर्चनीय होते हैं। सभी भक्तिपसक्ता सज्जा, भक्तिपसक्ता सज्जय साधीण सब काले सु, ये हमेशा भक्ति में और स्वाध्याय में डूबे रहते हैं। भक्ति में आसक्त रहते हैं और स्वाध्याय में स्वाधीन रहते हैं। एक तेवेर, अब देखिए लोकांतिक देव कौन बनते हैं उनका वर्णन है। एक तेवेर बहुभेम भाविदूण बहु कालम, इस क्षेत्र में जो अनेक प्रकार के वैराग्य को लंबे समय तक भावित करके संयम भावे ही मुनि देवालोयंतिया होती, संयम भाव पूर्वक मुनि अवस्था में रह चुके हैं, वही लोकांतिक देव होते हैं। इसमें कुछ और भी जो बात है वो और बताएंगे। थ्वीणिंदा सुसमाणु, कैसे मुनि होंगे वो जो लोकांतिक बनेंगे। थ्वीणिंदा सुसमाणु सुरुखे सुबंधु रियो वग्गो, जो समणो सम्मतो सोच्यलो यंतियो होती, जो स्तुति में और निंदा में एक समान रहते हैं, जो सुख दुख में शत्रु मित्र समूह में एक समान रहते हैं, जो सम्यक दृष्टि रहते हैं, ऐसे श्रमण ही लोकांतिक देव बन सकते हैं। जो निरवेक्खो देहो देहे निदंदाणि ममाणिरारंभा निरवज्जा समणवरा तेच्यलोयंतिया हुंती, जो निरपेक्ष रहते हैं, कोई अपेक्षा नहीं उनको किसी से, देहे भी शरीर के प्रति भी जिनको कोई अपेक्षा नहीं रहती, निर्द्वंद्व रहते हैं, निर्मम यानी मेरा मेरा नहीं करते, आरंभ रहित होते हैं, निर्दोष रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ श्रमण ही लोकांतिक होते हैं। संजोग विपजोगी संयोग और वियोग में लाहा लाहम जीविदे मरणे, लाभ अलाभ में जीवन मरण में जो समदिट्ठी समणो, जो श्रमण समान दृष्टि वाले हैं, सोच्य लोयंति होती, वही लोकांतिक होते हैं। अणवरद समम पत्ता संयम समिधिसु झाण जोगेशु दिव्य वर चरण जुत्ता समणा लोयंति आहुंती, निरंतर जो समता भाव को प्राप्त रहते हैं, जो संयम और समितियों में ध्यान योग में और तीव्र तपश्चरण में तत्पर रहते हैं, ऐसे श्रवण लोकांतिक होते हैं। पंच महव्य सहिता पंच सुसमिधि सुचिरम चेठंते चेठंति, पंचक विषय विरदा ऋषिणो लोयंती आहुंती, पांच महाव्रत सहित पांच समितियों में चिरकाल तक स्थिर रहते हैं और पांच इंद्रियों के विषयों के त्यागी रहते हैं, ऐसे ऋषि लोकांतिक बनते हैं। इस तरह लोकांतिक देवों का ये वर्णन था। इसमें दो स्थानों पर एक वर्णन और आता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में लिखा है कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रतिदिन सिद्ध पूजा करते हैं वो भी लोकांतिक देवों के पद को प्राप्त होते हैं। और पांडव पुराण में आचार्य शुभचंद्र भट्टारक जी ने लिखा है कि जो ब्रह्मचर्य का अत्यंत निर्मलता के साथ पालन करते हैं ऐसे अनुव्रती भी अगर अंत में महाव्रत धारण करके संलेखना कर लें तो वो भी लोकांतिक देव होते हैं। जैसे भीष्म पितामह के बारे में लिखा उन्होंने कि भीष्म पितामह जो थे वो बाण शैया पर थे, लेकिन अंत में दो मुनिराज वहां पर आते हैं और वो उनको संबोधन देते हैं, तो अपनी उसी अवस्था में सर्व सावध्य का परित्याग करके लोकांतिक देव बनते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य था उनका, वो भी लोकांतिक बनते हैं। तो इस तरह लोकांतिक देवों का थोड़ा विस्तार से वर्णन हो गया। जैनम जयतु शास्त्रम।